حضرت کی غیر موجودگی میں حضرت کی منشا کے مطابق تھوڑا سا مذاکرہ کرنے کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں. ایک بات جس کی طرف اسی دفعہ بلکہ ہر دفعہ ہمارے حضرت ہمیں متوجہ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھو جیسی نیت کرو گے اللہ ویسے فیصلہ کریں گے. اس کی آسان سی مثال, ایک بزرگ تھے مولانا مشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہ بیان کر رہے تھے. حضرت نے کہا کہ دیکھو اگر تم کسی کو پیسے دیتے ہو اس لیے کیونکہ وہ حاجت مند ہے, کسی کو پیسے دیے اس لیے کہ وہ کیا ہے, ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے, تو اس کو صدقہ کہیں گے. اس پر صدقے کے فضائل اور جو صدقے کے پر اللہ کے وعدے ہیں, انعامات ہیں, وہ آپ کو ملنا شروع ہوں گے. اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے اس وجہ سے کیونکہ مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے, تو اس کو کیا کہیں گے, کیا ہے, ہدیہ. اور اس پر ہدیہ کے فضائل اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتے ہیں. اگر اس لیے پیسہ دیا کیونکہ سب دیتے ہیں, شادی بیاہ کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, عید کے موقع پر سب دیتے ہیں, اس لیے مجھے بھی دینا پڑے گا, تو یہ کیا ہے, یہ رسم ہے, اس پہ نہ اجر ہے نہ ثواب ہے بلکہ یہ آپ کے لیے باعث پکڑ ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ناجائز ہے. پہلی صورت میں نیت تھی ضرورت پوری کرنے کی تو وہ کیا بن گیا, صدقہ. دوسری میں نیت تھی ہدیہ دینے کی تو کیا بن گیا, ہدیہ, محبت کے لیے تھی. دوسری میں نیت تھی رسم نبھانے کی تو کیا بن گئی, رسم. یہ وبال جان ہے. اچھا اس کو اس لیے دیا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں مجھے واپس ملیں گے, تو یہ کیا ہے, قرض ہے. اس پہ قرض کے احکامات, قرض دے کر اس سے مزید فائدہ اٹھانا چاہے گا تو کیا بن جائے گا, سود بن جائے گا. تو جیسے نیت, دیکھیں نیت کے بدلنے سے کیا ہو رہا ہے. اگر اس نیت سے دو رکعت پڑھی کہ اللہ بارش کرے, تو اس دو رکعت کو کیا کہیں گے, صلاۃ الاستسقاء ہے. اگر سورج گرہن ہو چکا اور اس لیے دو رکعت پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا دے, تو یہ کون سی صلاۃ ہے, صلاۃ الکسوف ہے. اگر اس لیے دو رکعت پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا کرے, تو یہ کون سی دو رکعت ہے, صلاۃ الحاجت ہے. اگر اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تو کون سی نماز ہے, صلاۃ الاستخارہ ہے. تو جیسے دیکھیں نا, جس نیت کی عمل کے سے پہلے جو نیت کی, اس عمل کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو گئی. میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دے, جو ہمارے بڑے بھی چاہتے ہیں, جو ہمارے بڑے ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی بدل جائے, ہمارا اندر سے دل بدل جائے, ہماری ترجیحات بدل جائیں, ہماری خواہشات بدل جائیں, ہماری سوچ بدل جائے, سب کچھ بدل جائے. صبغت اللہ, ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا. تو یہ کب ہوگا, جب ہم اس بات کی کیا کریں, نیت کریں. ایک ہے کہ ہم آخر میں دعا مانگے, میں بھی ایک دعا مانگ لیتا ہوں, شروع میں دعا مانگ لیتے ہیں اللہ سے, آپ حضرات بھی اس پہ آمین کہہ دیں. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ, ہم ہر دفعہ بیٹھتے ہیں لیکن ہماری ہی ناکامی کی وجہ سے, ہماری ہی غفلت کی وجہ سے ابھی تک ہمیں وہ حاصل نہیں ہو رہا اس مجلس سے جو حاصل ہونا چاہیے. یا اللہ, محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کے ہماری کامل اصلاح فرما دیں. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اچھا اس کامل اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी सफ़र को भी आसान कर दिया। आप हजरात को पता होगा 100 साल पहले की बात है, सिर्फ या शायद 70-80 साल पहले की बात है कि लोग बैलगाड़ी पर भी जाया करते थे काफलों की सूरत में हज करने के लिए। 6 महीने का रास्ता जाने का, 6 महीने आने का, साल लगता था। अच्छा, वो अफराद तो आज भी ज़िंदा होंगे जिन्होंने बहरी जहाँ से हज किया हो, वो हजरात होंगे ज़िंदा। हमने भी तकरीबन 70s-80s तक तकरीबन बहरी जहाज़ का कराची से जाता था, कराची से भी जाता था, इंडिया बम्बई से भी जाता था। 8 दिन का सफ़र सिर्फ बहरी जहाज़ का, तो उसमें तकरीबन 2 महीने लग जाया करते थे। तो अल्लाह ताला ने आसान कर दिया, ये ज़ाहिरी सफ़र को भी अल्लाह ने आसान कर दिया। 2003 में मैंने दारुल उलूम कराची में दौरा किया, उस वक्त तक हमारे पास तकरीबन दौरे हदीस में दारुल उलूम कराची में तकरीबन कोई 350-450 तलबा थे। 1 या 2 तालिबे इल्म के पास मोबाइल था, 2003 की बात बता रहा हूँ, अच्छी तरीके से मुझे याद है। और अब प्लम्बर भी आता तो हम कहते अपना नंबर दे दो, रब्ता कर लेंगे। आसान कर दिए ना अल्लाह ने, अल्लाह ने राबते को बहुत सी सहूलियात पैदा कर दी। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रहीम और करीम है। जिस अल्लाह ने ज़ाहरी सफ़र को आसान किया, उसने क्या किया, दीनी सफ़र को भी आसान किया। अब वो मुशक्क़तें नहीं हैं, हम तो काबिल ही नहीं है ना। जो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुर्ता उतारा हुआ है और मक्का की गर्मी 48-49 तो हमने ख़ुद देखा था 2019 में, जब हम होटल से निकल कर जा रहे थे तो मोबाइल पे आ जाता है ना टेम्परेचर आ रहा होता है, 48-49 तो मैंने ख़ुद देखा है। मक्का की गर्मी, गर्म हवा आ रही थी तो उसमें हमने देखा तो 48-49 था। तो 48-49 लाहौर में कभी भी नहीं होता, या कभी शायद रिकॉर्ड हुआ होगा इतना टेम्परेचर। तो 48-49 टेम्परेचर के अंदर कुर्ता उतार कर, लोहे की ज़रा पहना कर, तपती हुई रेत पर लिटाकर, ऊपर से पत्थर रख कर रख दिया। और बिलाल हबशी क्या फरमा रहे, अहद 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 एक है। लोगों ने पूछा यार इतने आप बोलते हो और मारते, जब अहद सुनते और मारते, क्यों बोल, ये लफ्ज़ मत बोलो, एक खुदा की बात मत करो। तो अहद वो जितना मारते कहते अहद। तो लोगों ने पूछा बिलाल हबशी से कि आप खूब चाप चुप ही रहे ना, इतनी आपके ऊपर मुशक्क़त बढ़ती, आपकी कमर जल गई, पूरा बदन झुलस गया, ना काबिले बर्दाश्त तकलीफ है, उस पर आप अहद बोलते तो और मार पड़ती, क्यों बोलते हैं। कहते हैं कि बस जितना मुझे मारते हैं मुझे अहद बोलने में और मज़ा आता है, हमें भी अल्लाह का नाम लेने में ऐसा मज़ा आ जाए, तो हम उस मुशक्क़त के काबिल नहीं है ना। हज़रत ख़ब्बाब बिन अलत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक दफ़ा हज़रत उमर ने फरमाया कि ख़ब्बाब अपनी कमर दिखाओ। अगर ख़ब्बाब बिन अलत रज़ी ने कमर दिखाई तो इतने बड़े बड़े कमर के अंदर गढ़े पड़े हुए थे, जैसे गढ़े पड़ गए। तो पूछा कि ऐसी कमर तो किसी की नहीं देखी। आगे होता यह था कि कुफार मेरे कपड़ा उतार कर दहकते हुए कोलों पर मुझे कमर के बल लिटा देते, मेरी खाल जल जाती, गोश्त जलता, अंदर से चर्बी पिघलती, उससे कोयले बुझते थे। तो ये उतने कोयलों के निशान, इतने बड़े बड़े गढ़े ये मेरी कमर पे पड़ गए। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अम्मार के वालिद, कुफार ने कुरैश ने एक हाथ पर एक घोड़ा बांधा, एक हाथ पे एक घोड़ा बांधा, एक पाँव पे एक घोड़ा, एक पाँव पे दूसरे पाँव पे दूसरा घोड़ा, 4 घोड़ों को 4 मुख्तलिफ सिम्त में दौड़ाया तो जिस्म के 4 टुकड़े हो गए। हज़रत अम्मार की वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व अर्ज़ाहा को अबू जहल ने इंतहाई हैवानियत के साथ जवान बेटे के सामने शहीद कर दिया। हमारे अंदर उतना मुजाहदे की ताकत ही नहीं है ना, और हम कर भी नहीं सकते। अल्लाह से आफियत मांगते हैं, अल्लाह हम बहुत कमज़ोर हैं। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. يا الله جو پہلے لوگوں پہ بوجھا نا وہ نہیں. حضور نے ایک دفعہ خانہ کعبہ پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو صحابہ کرام آئے, حالات ایسے چل رہے تھے. آج کل میں یہ بس لے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کل ہر جگہ جان بیٹھا نا حالات کی بات چل رہی, مہنگائی کی بات, مہنگائی ہو گئی, یہ ہو گیا. تو صحابہ کرام پہ حالات یہ تھے, یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حالات چل رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر. یہاں تک کہ بعد صحابہ کرام تو اجازت لے کے حبشہ کی طرف چلے گئے. تو جب حضور سے زیادہ اس بات پہ کہا کہ برداشت نہیں ہوتا تو حضور تھوڑے سے ناراض ہو گئے, اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کی قسم تم جلدی مچاتے ہو, اللہ کی قسم تم جلدی مچاتے ہو. تم سے پہلے والوں کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی کو لایا جاتا, زمین کے اندر اس کو گاڑا جاتا اور اس کو مطالبہ کرتے کہ کلمے سے ہٹ جاؤ, ایمان سے ہٹ جاؤ, کفر پہ آ جاؤ. وہ انکار کرتا تو آرے کو رکھ کر اس کے سر سے دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا, زندہ انسان. اور دوسرے آدمی کو لایا جاتا اور اس کو باندھ کر زندہ انسان کے جسم سے لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا, لیکن وہ ایمان پہ قائم رہتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اتنے بڑے بڑے مجاہدے تو ہم تو ہے ہی نہیں اس قابل, اللہ سے 100 دفعہ پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں. تو ہمارا مجاہدہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب جامع اشرفیہ کے شیخ الحدیث فرمانے لگے اس وقت کا اللہ کا ولی کون ہے جو 5 کام کر لے. 5 کا مطلب 5 شعبوں پہ محنت کر لو. دیکھو فرض, واجب, سنت مقدہ پوری, یہ نہ چھوٹے آپ. دوسری ہر حرام سے مکرو تحریمی سے بچ جاؤ, علماء کرام سے پوچھتے رہو, بار بار پوچھو. ابھی ہمارے حضرت کا بیان ہوا مکہ مکرمہ میں, عزیزیہ میں بیان ہوا, شاید ہمارے بھائی عدیل صاحب نے بھیجا بھی تھا گروپ میں, کل بیٹھا میں سن رہا تھا بیان حضرت کا. حضرت نے یہی بات ارشاد فرمائی جو میں عرض کر رہا ہوں نا, یہی باتیں ہمارے بڑوں کی باتیں جو ارشاد میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرت نے شادی کے موقع پر سنت کیا ہے, فرائض کیا ہے, واجبات کیا ہے, مکرو تحریمی کیا حرام, اس سے یہ سیکھو. جو آدمی اس دور میں ہر ہر جگہ پہ 5 چیزوں کا خیال کرے, فرض پورا کرے, واجب پورا کرے, سنت موقع نہ چھوڑے, مکروہ تحریمی اور حرام سے بچ جائے, بس وہ اللہ کرے. حضرت صوفی سرور صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کا ولی بنے. اس وقت ہمارا مجاہدہ یہ حلال پر آنا, 100% حلال پہ آ کے 100% حرام سے بچ جاؤ, فرائض واجبات سنت موقع کوئی نہ چھوٹے انشاءاللہ, حرام میں پوری تحریمی سے بچ جاؤ, پھر چاہے جائز چیزیں جتنی مرضی کرو. ہمارے مشائخ, ہمارے حضرت دیگر مشائخ آج کل اس دور میں کھانے پینے باقی جائز چیزوں میں وہ پابندی نہیں لگاتے. ہمارے استاد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کتاب دیتے ہیں, اصلاحی کتاب پڑھنے کے لیے تبلیغ دین کے نام سے. تو اس تبلیغ دین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, تو بہت سے تقلیل طعام, کام کھانا کم کرو, اس کی بہت سی ترغیب تھی. تو میں نے کہا جی کھانا تو اب چونکہ ہمیں تو صبح سے لے کے شام تک مختلف مصروفیات ہوتی ہیں, کھانا کم کریں گے کمزوری ہو جائے گی, کھانا کم نہیں کر سکتے. لیکن میں نے کہا کہ چلو بازاری چیزیں کم کر دیتے ہیں خود سے. ایک یہ چیز کہ بازار کی چیزیں نہیں کھانے, جو چیز کھانے گھر کے پکی ہوئی کھانے. تو میں نے اساتذہ سے ذکر کیا تو اساتذہ نے پھر حضرت صوفی سرور صاحب کا حوالہ دیا کہ ان کے پاس بھی جب مہمان آتے تو بازار سے کچھ چیزیں آ جایا کرتی تھیں. اشارہ یہ تھا کہ ان چیزوں میں بھی اتنی سختی نہیں کی, حلال ہے سختی نہیں کی. بازاری چیز بھی چھو, ہمارے بڑے بزرگ تھے جو لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پرہیز کرتے تھے بازاری چیزوں سے, ہمارے بڑے مشائخ کا ذکر. لیکن ہمارے مشائخ نے ہمارے لیے भाई हलाल की तहकीक कर लो, हलाल है बस फिर इस्तेमाल कर लो, हलाल नहीं है उस पर वहाँ पर ब्रेक लगाओ। अच्छे कपड़े बनाने कोई बात नहीं, जायज़ कपड़े बनाओ, शरीयत के मुताबिक कपड़े बनाओ, बेशर्मी बेहाई वाले कपड़े ना बनाओ, गैरों के नकाली वाले कपड़े ना बनाओ, जायज़ सुन्नत के मुताबिक कपड़े बनाओ, तो अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो, नहीं मना के, जायज़ है ना, कोई मसला नहीं। सवारी अच्छी लेनी है, अच्छी सवारी लेना है, कोई मसला नहीं, ले लो। घर कुशादा, बल्कि वो तो हदीस शरीफ में उसकी तरगीब दी ना कि तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की खुशबख्ती की अलामत है, अच्छी सवारी मिल जाए, अताद करने वाली बीवी मिल जाए और कुशादा घर मिल जाए, तीन चीज़ें बयान फरमाई हदीस में। तीन चीज़ें कहा कि इंसान की खुशबख्ती की अलामत है, तो इसमें भी नहीं कहा भी घर भी खुला बनाना है, अल्लाह ने आपको दिया है, आप खुला घर बनाना चाहते हैं, बड़ा ख़ानदान है, तीन चार भाई इकट्ठे मिलके अपना अपना पोर्शन, शरीयत को सामने रखो, अहकामात शरीयत को सामने रखो। अहकामात शरीयत का मतलब ये है हर भाई का पोर्शन अपना अलहदा हो, बीवी को अलहदा पोर्शन दो, ये उसका हक है ना, अब ये वाजिब हक है। थानी रहमतुल्लाह ने ये लिखा है कि देखो अगर इकट्ठे दो तीन खानदान रहते हैं तो हर एक का किचन बावर्ची खाना अलहदा, चूल्हा अलहदा हो, औरत का हक है कि उसका अलहदा चूल्हा मिले, ये वाजिब है। उलमा का मैंने अर्ज किया ना कि उलमा कराम से एक एक चीज़ को सीखो, वाजिब किया है, कोई वाजिब तो नहीं छूट रहा, फ़र्ज तो नहीं छूट रहा, तो फिर अगर वाजिब पूरे कर रहे हो जितना मर्जी बड़ा घर बना लो, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह तआला। अगर तकरीब के अंदर गाना बजाना नहीं है, औरत और मर्दों का इख्तलात नहीं है, नाजायज और हराम काम नहीं है, तो जितनी मर्जी बड़ी दावत कर लो, बस इसराफ ना हो। 500 बंदों को बुला के 1000 बंदों का खाना पका लिए, 500 बंदों का खाना ज़ाया होगा, ये क्या है, इसराफ है, ये जायज़ नहीं है, इसको मना कर दिया शरीयत ने। हाँ अच्छा खाना पकाओ, अच्छा खाना खिलाओ, ज़ाया ना हो तो अच्छा खाना खाओ, कोई मसला नहीं, अच्छे खाने से मना नहीं फरमाया। पांच चीज़ों का ख्याल कर लो, पांच चीज़ें कौन सी हैं, फ़र्ज कोई ना छूटे, वाजिब कोई ना छूटे, सुन्नत मुअक्कदा कोई ना छूटे, हराम के पास ना जाए, मकरूह तहरीमी के पास है, पाँच चीज़ों का हर जगह के ऊपर ख्याल कर लो। बच्चों की तरबियत का वक्त आ गया, हमने बच्चों को पकड़ा किसी भी स्कूल के अंदर डाल दिया। मैं यहाँ पर गुलबर्ग में गया तो उनके साथ ही स्कूल था, अमेरिकन स्कूल था, उन्होंने कहा जी यहाँ पर सुबह सुबह अमेरिका का झंडा लहराते हैं और अमेरिका का कौमी तराना होता है, नेशनल एंथम होता है। ये लाहौर शहर की बात, ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिरदौस मार्केट के पास जो टोटल के पंप के पीछे अमेरिकन स्कूल है, वहाँ की बात बता रहा हूँ मैं। तो मुझे बताइएगा ऐसे माहौल में बच्चों को भेज, इसीलिए मुफ्ती शफी साहब ने लिखा कुरान हकीम में, अल्लाह ने कहा वला तक्तुल औलादकुम खशियत इमलाक, एक कत्ले औलाद के उसकी जान को मार देना ये उसका ज़ाहिरी कत्ल है, एक है औलाद तो है लेकिन उसकी तरबियत को बिगाड़ देना ये औलाद का रूहानी कत्ल है। अब फ़र्ज है औलाद की तरबियत, उसको ईमान सिखाना, उसको दीन सिखाना, उसको नमाज पर लगाना। हज़रत मौलाना उबैदुल्ला अनवर साहब रहमतुल्लाह, मौलाना उबैदुल्ला अनवर साहब रहमतुल्लाह, ये किसके बेटे थे, हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह थे। अपने वालिद माजिद हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह का वाक़या सुनाने लगे। हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह का वाक़या ये सुनाया कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह के पास एक खातून रोती पीटती, शिकवा करती, मिन्नत समाजत करती आ गई, और मसला ये था कि जी मैं, मेरा बेटा छोटा था, शौहर का इंतकाल हो गया, चूँकि पैसे थे, शौहर जो को छोड़ कर गया था इतना था, मोहताजी नहीं थी, मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बाद में पढ़ कर लिख कर आ गया, उसकी नौकरी वगैरह हो गई, उसकी शादी कर दी। अब उसने जो कि बड़ा पुराना आबाई घर था, उसके मुख्तलिफ पोर्शंस करके किराए पर चढ़ा दिया घर को, एक पोर्शन में खुद रहता था, एक पोर्शन में मैं रहती थी। अब मुझसे कहता है कि इस पोर्शन को भी खाली करो, तो मैं कहती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, मेरे तो कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी। फिर कहता है जहाँ मर्जी जाना चली जाओ, मुझे ये जगह चाहिए, इसको भी मैंने किराए के ऊपर चढ़ाना है। तो वो औरत रोती हुई हज़रत लाहौरी के पास आई। तो लाहौरी ने कहा कि तुम्हें आज मस्जिद याद आई है, इतने सालों के अंदर आज मस्जिद याद आई, जब अल्लाह ने बेटा दिया, जब उस बच्चे की तरबियत का वक्त था, कभी उसको मस्जिद में भेजा, कभी उसको नमाज पर लगाया, कभी उसको फ़राइज़ का बताया, कभी उसको अल्लाह का खौफ सिखाया, कभी उसको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे किया। कभी एक ही सबक, पढ़ना है कमाना है, पढ़ना है कमाना है, पढ़ना है कमाना है, किसी तरीके से ग्रीन कार्ड मिल जाए, किसी तरीके से ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए, किसी तरीके से कैनेडियन नेशनलिटी मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, बस निकलें, बाहर जाएं, पैसा कमाएं, ज़िंदगी गुजारें। जब यही सबक पढ़ाया, यही पढ़ते पढ़ते वो जवान हुआ, इसी को पढ़ के वो मुलाजमत कर रहा है, तो नतीजा तो अब है ना। मेरे अपना खाला, मेरा अपना मामूजाद भाई कराची के अंदर ईद के मौके पर उसने होटल में कमरा बुक कराया, अपनी बीवी बच्चों के साथ कमरे में चला गया कि जी मैंने ईद वहाँ मनानी है, माँ को छोड़कर वहाँ जाए। मेरा अपना मामूजाद भाई कराची के अंदर, क्यों? क्योंकि जिस आपने बीज को डालना था, वही बीज, जिस जो बीज डालोगे वही दरख्त निकलेगा। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि देखिए हमारे लिए आसान है। अब ये फ़राइज और वाजिबात पर आ जाए, हज़रत का मैं जिस बयान का जिक्र कर रहा था, हज़रत उसमें ये बात इरशाद फरमा रहे थे, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मालूम है लेकिन हमारे अमल में नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दो काम, वैसे तीन काम भी हैं, देखा जाए तो दो ही बनते हैं। एक तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है, और वो ये है कि हम नेक लोगों की सोहबत में आना शुरू हो जाए। सिर्फ नेक लोगों के साथ बैठना शुरू करें तो क्या होगा, नेकी आना शुरू हो जाती है। हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी खिदमत में हाज़िरी हुई। जिन हजरात ने ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देखा होगा, मुकम्मल सुकूत, जैसे होता है ना कि लंबे लंबा बयान चल रहा है और तकरीर है और कुछ नहीं, बिल्कुल सुकून, लोग बैठे हुए हैं, हज़रत भी बैठे हुए हैं, सुकून बिल्कुल। इस सुकूत के अंदर क्या है, जिन लोगों ने देखा होगा अगर ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास वक्त गुजारने वाले जिंदगियां तब्दील हो रही। हज़रत शाह नफीसुल हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने उनके पास भी लाहौर में जाने की तौफीक अता फरमाई, मुकम्मल से कोई मैंने नहीं देखा। एक दफ़ा हज़रत को मैं खुद अपनी गाड़ी में लेकर जामे मोहम्मदिया उस्ताद जी के पास लेकर आया, हज़रत ने आगे सिर्फ दुआ करी, सादा सी दुआ बिल्कुल। तो शाह नफीसुल हुसैनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास देखा, कोई बयान नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई लंबे चौड़े वाज नसीहत की बातें नहीं, तो फिर जो आ रहा बैठा हुआ अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर अहलुल्लाह के पास बैठना शुरू कर दो। सिर्फ मैंने ये तो खुद अपनी आंखों से देखा, सिर्फ नेक माहौल में आना शुरू कर दो, उस नेक माहौल की वजह से क्या होगा, खुद ब खुद इंशाअल्लाह ताला नेकी का रंग चढ़ना शुरू हो जाएगा। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह वाले गुज़र, कहने लगे देखो कुरान रंग है, लेकिन रंग कहाँ से मिलेगा, कहा कि उलमा रंग फरोश है। रंग फरोश के पास जाओगे तो क्या करेगा, थैली में डाल के रंग दे देगा, तो रंग मिल गया ना, लेकिन रंग चढ़ा, अभी चढ़ा नहीं है। तो कुरान रंग है, उलमा रंग फरोश है, लेकिन रंग चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहा कि अहलुल्लाह और मशायख रंग रेज है। रंग चढ़ेगा कब, जब मशायख की खिदमत पे जाओगे। तो जैसे हमारे हजरत हैं, अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमा दे, हम सबको तौफीक अता फरमाए, कि जो बड़े रह गए, हम तो बड़े खुश थे ना, हम तो बड़े बस चलते थे, सब चल रहा है, सब चल रहा है, देखते देखते हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह वो भी चले गए, वहाँ सरफराज खान सफदर साहब देखते देखते वो चले गए, शाह नफीसुल हुसैनी साहब वो भी चले गए, ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह वो भी चले गए, हमारे रायबंड के बुजुर्गों में से भाई अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह वो भी चले गए, मौलाना जमशेद साहब वो भी चले गए, रायबंड के इमाम मौलाना जमील साहब वो भी चले गए, मौलाना अब्दुल रहमान साहब उस्ताद थे पुराने रायबंड मरकज के वो भी चले गए, हमारे जामे अशरफी के सूफी सरवर साहब वो भी चले गए, मौलाना मुशरफ अली थानवी साहब वो भी चले गए, हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह वो भी चले गए, मेरे अपने उस्ताद मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी साहब वो भी चले गए, एक हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्र कांदेली रहमतुल्लाह के बड़े बड़े खुलफा वो भी चले गए। तो भाई जब इतने मशायख और उलमा उठते चले जा रहे हैं, जो रह गए हैं उनको क्या करना है, उनको गनीमत समझ लो। हमारे हजरत की जो वजूद है और हजरत के अल्लाह ताला हजरत की ज़िंदगी को तवील फरमाए, उनका साया हम पे बाकी रखे। देखिए जितना मौका है अल्लाह करे कि हम उनसे फ़ायदा उठाएं, सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला हमें उनसे फ़ायदा उठाने की तौफीक, ये बाहर चली गई दोबारा ये बाहर नसीब नहीं होंगे। तो एक काम क्या करना है, अहलुल्लाह की सोहबत, नेक लोगों की सोहबत, और दूसरा काम बता रहे हैं कि खलवत में कुछ देर बैठकर अल्लाह को याद कर लो, कुछ देर बैठकर अल्लाह को याद कर लो अल्लाह के नाम की। जैसे अभी बताया ना अल्लाह के नाम कैसा लगता है, बिलाल हमशी का वाक़ा सुना है ना, जब लग गया ना अंदर उतर गया फिर क्या है अहद अहद, तो जो मर्जी हो जाए, फिर चाहे रिजानुल्ला तलहीम तजारतुल्ला, तो वो जब अल्लाह का नाम जाता है फिर ये नहीं होता कि कभी है कभी नहीं है, नहीं, बस वो जब उतर गया ना तो वो एक आग लगा देता है इंसान के अंदर, फिर क्या खरीदो फरोख्त। हमारे हजरत के शेख मौलाना गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके एक मुरीद थे, हमारे हजरत मौलाना गुलाम रब्बानी रहम उनके बारे में कहा करते थे कि फनाफिस शेख है। हजरत ने अक्सर अपने बहनात में उनका वाक़ बयान फरमाया, हजरत कहते थे कि हजरत फरमाया करते थे मौलाना गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह उनके बारे में कि ये फनाफिस शेख है। अच्छा, उन साहब का अपना हाल ये था, वो कहते थे कि कैफियत कोई नहीं थी, ऐसे लोग होते हैं कि कुछ कैफियत हो, कुछ नज़र आए, कुछ सुरूर महसूस हो, कुछ भी नहीं। वो कहते थे मुझे पता ही नहीं चलता मेरा दिल जिक्र भी करता है कि नहीं करता। उनके बेटे से कुछ अरसा पहले हमारे हजरत की मुलाकात हुई, आपस में तारुफ वगैरह हुआ, तो हजरत ने फिर बताया कि आपके अब्बा जी वालिद के हवाले से हमारे शेख मौलाना गुलाम रब्बानी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे। तो कह उनके बेटे ने एक अजीब बात बयान की, उनके बेटे ने कहा कि हाँ एक बात बड़ी अजीब है, अगर पूरे ख़ानदान में कोई बात खिलाफ शरीयत होती अब्बा जी खड़े हो जाते, पूरा ख़ानदान सब एक तरफ होते अब्बा जी। तो ये अल्लाह के नाम की मश्क, लफ्ज़ अल्लाह को बार 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 बार, कि ये हमारे अंदर उतर जाए, जब ये अंदर उतर गया अल्लाह की मोहब्बत आ गई, सच्ची मोहब्बत आ गई, सच्चा ताल्लुक बन गया, फिर क्या होगा, बस फिर तो सारे काम बन जाएंगे। जब अल्लाह से ताल्लुक बन गया फिर सारे काम बन जाएंगे। इस नीयत के साथ थोड़ी देर अल्लाह का नाम लेते हैं। आँखों का बंद करना वक्ती ज़रूरत के तहत है कि आँखों को बंद करके दिल पर तवज्जो दें और तख़य्युल से तसव्वुर से दिल पर लफ्ज़ अल्लाह को लिख लें, किसी भी शक्ल में यानी किसी भी रंग के अंदर जो आसानी के साथ हो, और तवज्जो दें कि मेरा दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है और अल्लाह की रहमत मेरे दिल पर उतर रही है, नूर उतर रहा है, अल्लाह ताला मोहब्बत से मुझे देखते हैं और मेरा दिल अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। थोड़ी देर इसकी मशक कर लें, अगर तसव्वुर ना बने सिर्फ इतना जहन में लें कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं अपने अल्लाह को बग़ैर ज़बान हिलाए सिर्फ तसव्वुर से पुकार रहा हूँ और मेरा अल्लाह मेरी आवाज़ सुन रहा है, अल्लाह अल्लाह। थोड़ी देर जिक्र कर लें, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من القاسرين آمين يا رب العالمين اللهم سبق دماغ وقلوبك وصاف فرما شفاف فرما ہر قسم کے رذائل سے یا اللہ ہر قسم کی معصیت سے ہر قسم کے برے جذبات سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما اپنی سچی محبت اور معرفت نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کی کامل اصلاح فرما دے آمین یا رب العالمین اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العظيم امين يا رب العالمين صلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك